देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद में कल की कथा संपन्न हुई थी। सत्यभामा ने कहा कि द्रौपदी, तुम्हारे पांच पति हैं और पांचों ही पति तुम्हारे वश में रहते हैं, क्या कारण है? उल्टी बात है, हम 16,108 रानियां हैं और हमारे एक पति हैं, तुम एक हो, तुम्हारे पांच पति हैं। पति को कैसे वश में किया जाए? तो द्रौपदी ने पहले तो खूब डांटा फटकारा अपनेपन से, और उसके बाद उन्होंने अपने द्वारा की जाने वाली सेवा की बातें बताई। सत्यभामा बहुत खुश हो गई। सत्यभामा ने कहा कि पांचाली, मैंने जो तुमसे बात पूछी है उसके लिए तुम मुझे क्षमा करना, लेकिन तुम और मुझे सद्व्यवहार का उपदेश दो कि पति के प्रति स्त्री को और क्या बर्ताव करना चाहिए। बड़े स्नेह और प्रेम भाव से द्रौपदी ने कहा कि सत्य, मैं पति के चित्त को अपने वश में करने का यह निर्दोष मार्ग बताती हूं। यदि तुम इस पर चलोगी तो अपने स्वामी के मन को अपनी ओर खींच लोगी। सबसे पहले ये बात याद रखो कि स्त्री के लिए इस लोक में पति के समान कोई दूसरा देवता नहीं है। उसकी प्रसन्नता होने पर स्वाभाविक ही सब प्रकार के सुखों की वर्षा होती है, और असंतुष्ट होने पर अपने सब सुखों को मिट्टी में मिला देती है। हे साध्वी, सुख के द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता। सुख प्राप्ति का साधन तो दुख ही है। यदि तुम सुहृदता, प्रेम, परिचर्या, कार्य कुशलता तथा तरह तरह के पुष्प और चंदन आदि से कृष्ण की सेवा करो तथा जिस प्रकार वे यह समझें कि मैं इसे प्यारा हूं, तुम वही काम करो। जब तुम्हारे कान में पतिदेव के द्वार पर आने की आवाज लगे, आवाज पड़े, तो तुम आंगन में खड़ी होकर उनके स्वागत के लिए तैयार रहो। जब वे कक्ष के भीतर आए तो तुरंत आसन लगाओ और फिर पैर धोने के लिए अपने हाथ से जल लाकर उनका सत्कार करो। मैं मानती हूं कि आपके यहां सैकड़ों दास दासियां रहते हैं, पर वे जब आपके पति हैं तो ये सेवा आपके हाथ से अच्छी रहती है। यदि वे किसी काम के लिए दासी को आज्ञा भी दें तो दासी से पहले तुम स्वयं ही उठकर उनके काम को पूरा कर दो। कृष्णचंद्र को ऐसा मालूम होना चाहिए कि तुम सब प्रकार उन्हें चाहती हो। तुम्हारे पति यदि तुमसे कोई ऐसी बात कहें जिसे गुप्त रखना आवश्यक न हो तो तुम उसे किसी से मत कहो। यद्यपि कहने में कोई बात नहीं है, गुप्त रखना आवश्यक नहीं है, तब भी मत कहो। पतिदेव के जो प्रिय व्यक्ति हैं, स्नेही हैं, हितेशी हैं, उनका घर में सम्मान करो, भोजन कराओ, तथा जो उनके शत्रु, उपेक्षणी और अशुभ चिंतक हों अथवा उनके प्रति कपट भाव रखते हों उनसे सदा दूर रहो। प्रद्युम्न और सांब यद्यपि तुम्हारे बेटा हैं तो भी एकांत में उनके पास भी मत बैठो। जो अत्यंत कुलीन, दोष रहित और सती हो, उन्हीं स्त्रियों से तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। क्रूर, लड़ाकी, पेटू, चट्टू, चोरी की आदत वाली, दुष्टा, चंचल स्वभाव की स्त्रियों से सदा बचते रहो। इस प्रकार तुम सब तरह अपने पतिदेव की सेवा करो। इससे तुम्हारा यश और सौभाग्य का वर्धन होगा, अंत में स्वर्ग मिलेगा और तुम्हारे विरोधियों का अंत हो जाएगा। इस समय भगवान श्री कृष्ण मार्कंडेय आदि मुनियों और महात्मा पांडवों के साथ तरह तरह की मन के अनुकूल बातें कर रहे थे। अब वे द्वारिका चलने के लिए रथ में चढ़ने लगे। उन्होंने सत्यभामा को बुलाया। सत्यभामा जी, रथ में चढ़ने से पहले बार बार द्रौपदी से गले मिलती है और स्नेह से अश्रुपात होता है। द्रौपदी ढाढ़स बनाती है। सत्यभामा बोली, कृष्ण तुम चिंता मत करो, व्याकुल मत हो। इस प्रकार रात रात भर जागना छोड़ दो, तुम्हारे पति फिर राज्य प्राप्त करेंगे। तुम्हारे समान शील संपन्न और आदरणीय महिलाएं अधिक दिन दुख नहीं भोग सकती, क्योंकि तुम्हारे दुख का भार पृथ्वी के ऊपर बढ़ता जाएगा। इसलिए सारी देव शक्तियां तुम्हारे दुख को दूर करने में लगी हैं। मैंने महापुरुषों के मुख से ये बात सुनी है कि तुम अवश्य ही निष्कंटक होकर अपने पतियों के साथ पृथ्वी का राज्य भोगोगी। तुम शीघ्र देखोगे कि दुर्योधन का कैसे वध हुआ है। वो दृश्य तुम्हारे सामने नाचने लगेगा कि महाराज युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा है। तुम्हें दुख में देखकर जिन्होंने तुम्हारा अप्रिय किया है, उन सबको नरक में जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से उत्पन्न तुम्हारे जो पांच पुत्र हैं, वे सभी शस्त्र विद्या में निपुण बांकुरे वीर हैं। वे अभिमन्यु की तरह बड़े आनंद से द्वारिका में रह रहे हैं। उनकी कोई चिंता मत करो। सुभद्रा देवी उन सब का तुम्हारे ही समान देखभाल करती है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती हैं। प्रद्युम्न की माता रुक्मणी जी भी उनका सब प्रकार लाड़ चाव करती है और श्याम सुंदर भी भानु आदि अपने पुत्रों से उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते हैं। उनकी भोजन वस्त्र आदि की देखभाल ससुर जी रखते हैं तथा और भी बलराम जी आदि सब अंधक और वृष्णिवंशी यादव उनकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। उन्हें प्रद्युम्न और तुम्हारे पुत्रों के प्रति एक सी प्रीति है। ऐसी बहुत प्रिय और आनंददायक बातें कहकर सत्यभामा जी बार बार द्रौपदी की ओर देख रही है और रथ की तरफ भी जा रही है। वे जाकर रथ में बैठी और द्रौपदी की ओर देखती रही। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर द्रौपदी को धैर्य के वचन सुनाते हुए कहा, पांचाली किसी प्रकार का क्षोभ मत करना, पांडवों का ध्यान रखना। और फिर पांडवों को लौटाकर घोड़ों की गति को तेज कर द्वारिका की ओर चले गए। जनमेजय ने पूछा, इस प्रकार वन में रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु, धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर तो बहुत कमजोर हो गए होंगे। ऐसी स्थिति में द्वैत वन में उस पवित्र सरोवर पर आकर फिर क्या किया वो मुझे बताइए। वैशंपायन जी बोले, राजन उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया, वहां एक कुटिया बनाई, आसपास के रमणीय वन पर्वत और नदियों के किनारे विचरने लगे। वे वीर श्रेष्ठ इस प्रकार वन में निवास करने लगे तो आसपास अनेकों वेदाध्ययनशील ब्राह्मण आते और नरश्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते थे। उन्हीं दिनों की बात है, एक कुशल ब्राह्मण आया, उनसे मिलकर वह कौरवों से मिला और फिर वो धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। बूढ़े और अंधे कुरुराज धृतराष्ट्र को मालूम हुआ कि कोई पांडवों से मिलकर एक ब्राह्मण आया है तो उसका यथोचित सत्कार किया, फिर आग्रहपूर्वक पांडवों का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सहन रहे हैं। वायु और धूप के कारण उनके शरीर काले और कृश हो गए हैं। अरे राम, द्रौपदी की तो बात ही मत पूछिए, वह वीर पत्नी अनाथ होकर घूम रही है, सब प्रकार के दुखों से दबी हुई है। पतियों का दुख देखकर द्रौपदी के हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है, वह कभी कभी तो मूर्छित हो जाती है। उनकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव लोग इस प्रकार दुख की नदी में पड़े हुए हैं तो धृतराष्ट्र का हृदय करुणा से भर आया और लंबी लंबी सांसें लेकर कहने लगा, धर्मपुत्र युधिष्ठिर तो मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे, मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया है। ब्राह्मण अर्जुन भी कोमल स्वभाव का है, युधिष्ठिर के स्वभाव का, आज्ञा का अनुसरण करेगा, किंतु इस वनवास से भीम का कोप तो और बढ़ जाएगा, जैसे हवा लगने से आग बढ़ जाती है। उस क्रोधानल से जलकर वह वीर हाथ से हाथ मलकर इस प्रकार अत्यंत भयानक और गर्म सांस लेता होगा, वो तो मेरे पुत्र और पौत्रों को जलाकर भस्म कर देगा। ब्राह्मण, मेरे मन में रात दिन इसी बात का विचार आता है, बहुत खोटे खोटे सपने भी देखता हूं। अरे इन दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन की बुद्धि न जाने कहां मारी गई। इन्होंने जो राज्य जुए के द्वारा छीना है उसे ये शहद सा मीठा समझते हैं, इसके द्वारा अपने सर्वनाश की ओर इनकी दृष्टि नहीं गई। देखो, शकुनी ने कपट की चालें चलकर अच्छा नहीं किया, फिर भी पांडवों की साधुता देखो। ब्राह्मण, इतने बड़े अत्याचार के समय में भी चुप रहे। उस समय यदि सभा में भीम अपना क्रोध दिखाता तो इनमें से किसी को जीवित नहीं छोड़ता, लेकिन पांडवों की सहिष्णुता तो सीमा को पार कर गई, और मैं भी इस कुपुत्र के मुंह में फंसकर न जाने क्या क्या अपराध करता हूं, जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप आ रहा है। सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय धनुर्धर हैं, उनके गांडीव धनुष का कोई भी किसी प्रकार सामना नहीं कर सकता। अब उसके सिवा उसने और भी अनेक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए हैं, ऐसा मुझे मालूम चला है। त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो अर्जुन के तेज को सहन कर लेगा। धृतराष्ट्र ये सब बातें कर रहे थे, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, उनको पता नहीं चला, और इधर चुपचाप शबल पुत्र गंधार नरेश शकुनी ने ये बातें पीठ पीछे सुन ली और वहां से धीरे धीरे जाकर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर सब बातें सुनाई। ये सब बातें सुनकर क्षुद्र बुद्धि दुर्योधन उदास हो गया। तब शकुनी और कर्ण ने उससे कहा, हे दुर्योधन, हे भरत नंदन, अपने पराक्रम से तुमने पांडवों को यहां से निकाला है, अब तुम अकेले ही इस पृथ्वी को इस प्रकार भोगो जैसे इंद्र स्वर्ग का राज्य भोगता है। दुर्योधन, तुम्हारे बाहुबल से आज पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर चारों दिशाओं के राजा लोग तुम्हें कर देते हैं, टैक्स देते हैं। जो दीप्तिमती राज लक्ष्मी पहले पांडवों की सेवा करती थी, अब वह तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मिली हुई है। हे दुर्योधन, सुना है आजकल पांडव लोग द्वैत वन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं, सो मेरा ऐसा विचार है कि तुम खूब ठाट बाट से वहां जाओ और सूर्य जैसे अपने ताप से संसार को तपाता है, उसी प्रकार अपने तेज से पांडवों को जलाओ, संतप्त करो। तुम्हारी रानियां उत्तम रथों में बैठे, बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित होवे और वैसी सरोवर के पास जाकर ठुमक ठुमक कर ऐठ ऐठ कर चले, ताकि मृगचर्म धारण करने वाली वलकल धारिणी द्रौपदी उनको देखे और अपनी छाती ठंडी करे और द्रौपदी को अपना ऐश्वर्य भरा जीवन याद आए कि आह, मैं भी ऐसे ही पहना करती थी, आज ही मैं कौन से दिन में रह रही हूं। दुर्योधन, शत्रु को कई शस्त्रों से मारा जाता है और शस्त्र तो बाहर के हैं, ये अंतः शस्त्र है, अंदर का शस्त्र है। उनको अपमानित, लज्जित और उनको अपनी आत्मग्लानी में मरने दो, बिना शस्त्र चलाए तुम उनको मार दोगे। चलो दुर्योधन, द्वैत वन में सरोवर के पास चलते हैं। जन्मेजय दुर्योधन से ऐसा कहकर कर्ण और शकुनी चुप हो गए। तब राजा दुर्योधन ने कहा, कर्ण, शकुनी, तुम जो कुछ कहते हो वह बात मेरे मन में भी बसी हुई है। जब तक इन आंखों से पांडवों को वलकल वस्त्र पहने, मृगचर्म ओढ़े देख न लूं, तब तक मुझे खुशी भी नहीं होगी। इस राज्य से खुशी नहीं है, पांडवों को तड़पते तड़पते देखने में जो आनंद आएगा वो आनंद हस्तिनापुर के राज्य में नहीं है, सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं आनंद आ सकता। भला इससे बढ़कर और क्या प्रसन्नता की बात होगी कि द्रौपदी को वन में गैरवा वस्त्र पहने देखूं और उस द्रौपदी से कहूं कि द्रौपदी ठीक हो ना, परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं सूझ रहा है कि किस उपाय से द्वैत वन में जाऊं, और क्या महाराज मुझे वहां जाने की आज्ञा भी दे देंगे। इसलिए मामा शकुनी जी और भाई दुशासन, आप सब मिलकर के ऐसी कोई युक्ति निकालो जिससे हम द्वैत वन में जाएं और थोड़ा पांडवों को वनवास का मजा चखाएं। सब लोगों के चेहरे खिल गए। शकुनी, कर्ण, दुशासन कहने लगे, बहुत ठीक है, आपने बड़ा अच्छा प्रस्ताव रखा है। उस मूर्ख भीमसेन से कहेंगे, भीमसेन, वन के अंदर कोई मिला क्या? योद्धा मिला? बहुत अच्छी बात। रात बीत गई, भोर हुआ, सब लोग दुर्योधन के पास आए। तब कर्ण ने हंसते हुए दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैत वन में जाने का एक बहुत अच्छा उपाय सुझा है, सुनिए। आजकल आपकी गौएं के गोष्ठ द्वैत वन में ही है, आपकी जो गायें हैं वो वहीं चर रही, उधर ही हैं, और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग घोष यात्रा के बहाने वहां चलेंगे कि हम गायों को लाने जा रहे हैं। शकुनी भी हंसार बोला, द्वैत वन में जाने का ये उपाय तो मुझे भी खूब जस्ता है, इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अनुमति देंगे, घोष यात्रा के लिए कौन मना करे, और वहां जाकर पांडवों से मेलजोल करने के लिए भी समझाएंगे कि वहां पांडव मिले तो हम भाई भाई मिले, प्रेम करें। राजा इस बात को सुनकर खुश हो जाएंगे और ग्वाले लोग द्वैत वन में तुम्हारे आने की बाट देखते ही हैं, इसलिए घोष यात्रा के बहाने से द्वैत वन में जाकर अपने भाइयों के पवित्र दर्शन करने का बड़ा अच्छा मौका मिला है। इस प्रकार सलाह करके सब राजा युधिष्ठिर के सब लोग राजा युधिष्ठिर के पास आए और उन सब ने धृतराष्ट्र से सब राजा धृतराष्ट्र के पास आए और उन सब ने धृतराष्ट्र से तथा धृतराष्ट्र ने आपस में कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने पहले से ही समंग नाम के गोप को पढ़ा चढ़ाकर भेज दिया था, इन दुर्योधन आदि ने, एक गोप था ग्वाला समंग नाम, उसने जाकर निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौवे समीप आई हुई है, बहुत दूर तक, बहुत दिनों तक चरने के लिए गई थी, वो पास ही आई हुई है। कर्ण और शकुनी ने कहा, महाराज, गौवे तो रमणीक प्रदेश में ठहरी हुई है, इस समय गाय और बछड़ों की गणना करना और उनके रंग और आयु का ब्यौरा देना लिखना बहुत उपयुक्त समय है। कितनी गायें हैं, कैसी गायें हैं, कितने रंग की गायें हैं, हमारे देश की गायें कितनी हैं, इसलिए आप दुर्योधन को वहां जाने की अनुमति दे दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, गौओं की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है कि उस द्वैत वन में आजकल नर शार्दूल पांडव लोग भी उधर ही कहीं पास में ठहरे हुए हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने उन्हें कपट में जुए में हराया है और उन्हें वन में रहकर बहुत कष्ट भोगना पड़ा है। कारण वे लोग तब से निरंतर तप करते हैं, अब सब प्रकार से शक्ति संपन्न हो गए हैं, तुम लोग तो अहंकार और मोह में चूर हो रहे हो, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं, और ऐसा होने पर वे तुमको मारे बिना छोड़ेंगे नहीं, अपनी तपस्या से तुमको भस्म कर देंगे, इसलिए मेरी दृष्टि में वहां जाना उचित नहीं है। इतना ही नहीं, उनके पास सब अस्त्र शस्त्र हैं। हमने सुना है अर्जुन ने तपोबल के द्वारा देवताओं के सारे अस्त्र अपने हृदय में धारण कर लिए हैं और अपने बाण पर जिस अस्त्र की कल्पना करेगा उसी अस्त्र को वो छोड़ देगा। वो शस्त्राग्नि में तुम्हारा हवन कर सकते हैं, तुम लोग संख्या में अधिक हो तो क्या हुआ, संख्या नहीं चलती है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एक बाण से असंख्य बाण निकलते हैं, वहां संख्या की क्या गिनती होगी। और यदि कदाचित तुम लोगों ने उन दबा लिया तो सारे संसार में तुम्हारी नीचता में गणना होगी कि कौरव बड़े नीच हैं। अभी तो एक पाप अभी धुपा नहीं है, नया पाप करने चले जाओगे। मैं तो तुम्हारे लिए उन पर काबू पाना संभव नहीं समझता हूं। देखो अर्जुन को जिस समय दिव्य अस्त्र नहीं मिले थे तभी उसने सारी पृथ्वी को जीत लिया था, अब तो दिव्यास्त्र पाकर तुम्हें मार डालने के लिए ही तो वो प्राप्त किया, कैसे तुमको छोड़ेगा। इसलिए मुझे स्वयं तुम लोगों का वहां जाना उचित मालूम नहीं देता। गांवों की गणना करनी है, गांवों की जानकारी लेनी है, इतने से छोटे काम के लिए राजकुमार लोग कहीं नहीं जाया करते हैं। किसी भी क्षेत्र के राजकुमार नहीं जाते, विश्वास पात्र नौकर को भेजते हैं, सेवकों को भेजते हैं। शकुनि ने कहा, महाराज आप इतना अविश्वास क्यों करते हैं, हम लोग केवल गवों की गणना ही करना चाहते हैं, गवों के अलावा हमारा वहां कोई काम नहीं रहेगा, हमारा वहां पांडवों से मिलने का विचार भी नहीं है, हम तो वहां अकस्मात मिल गए तो भाई भाई का प्रेम से मिलना हो जाए उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि पांडव हमको मिले भी हम पांडवों की तरफ देखेंगे भी नहीं, इसलिए हमारी तरफ से कोई अभद्रता अशिष्टता होने की संभावना ही नहीं है। जिधर पांडव लोग रहेंगे हम उधर जाएंगे क्यों, हमें क्या मतलब। शकुनी ने इस लहजे से धृतराष्ट्र को समझाया कि धृतराष्ट्र ने इच्छा न होने पर भी दुर्योधन को मंत्रियों सहित जाने की आज्ञा दे दी। उनकी आज्ञा पाकर दुर्योधन अपने मन में बड़ा आनंद मनाता हुआ बहुत बड़ी भारी सेना लेकर हस्तिनापुर से चला। दुशासन, शकुनी, कर्ण और अर्जुन ने विचार किया, हो सकता है जैसा महाराज ने कहा है पांडवों से युद्ध बीच में करना पड़ जाए, इसलिए अपनी सेना को बहुत सशक्त बनाकर के लिए चलना है। उनके साथ उनकी हजारों स्त्रियां भी थी, उनके सिवा 8,000 रथ, 30,000 हाथी, हजारों पैदल, 9,000 घोड़े और सैकड़ों की संख्या में बोझ ढोने के लिए छकड़े, दुकानें, बनिए और बंदीजन भी चले। बहुत बड़ा लश्कर वहां रवाना हुआ और जहां डालता था वहां चलता था, डेरा डालता वहां ऐसा लगता था कि कोई नगर बस गया। ऐसे चलते 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 वे द्वैत वन में पहुंच गए। वहां जाकर ठीक ठाक अपना रहने का सबने प्रबंध कर लिया और दुर्योधन ने अपनी असंख्य गवों का निरीक्षण किया और उन पर नंबर और निशानी डलवाकर सबकी अलग अलग पहचान कर ली। फिर बछड़ों पर भी निशानी डलवाई और उनमें जो नथने योग्य थे उन्हें अलग बता दिया तथा जो गौवें छोटे छोटे बच्चों वाली थी उनकी अलग गणना कर दी। इस प्रकार गाय बछड़ों की गणना कर उनमें से तीन तीन वर्ष के बछड़ों को अलग गिन वह ग्वालों के साथ आनंद से वन में विचरण करता था। घूमते 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 द्वैत वन के उस सरोवर के पास पहुंच गया। उस समय उसका ठाट भात बड़ा बड़ा चढ़ा था। वहां उस सरोवर के तट पर ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर घास फूस की कुटिया बनाकर रहते थे। एक कुटिया में रहते थे वे। महारानी द्रौपदी सहित इस समय दिव्य विधि से एक दिन में समाप्त होने वाले राजर्षि नामक यज्ञ को कर रहे थे। तभी दुर्योधन ने अपने हजारों सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहां एक क्रीड़ा भवन तैयार करो। सेवक लोग राजाज्ञा को सिर पर रखकर क्रीड़ा भवन बनाने के विचार से द्वैत वन सरोवर पर आए। जब वे वन के दरवाजे में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहां गंधर्वराज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक देवता और अफसरों सहित आया हुआ था और उसने चारों तरफ से उस सरोवर को घेर रखा था। पांडव लोग यज्ञ में और गंधर्व लोग सरोवर में जल क्रीड़ा करने में थे और दुर्योधन अंदर से पांडवों को चिढ़ाने के उद्देश्य से क्रीड़ा भवन बना रहा था वहां। इस प्रकार सरोवर को गंधर्वों के द्वारा घिरा हुआ देखकर वे सब लोग दुर्योधन के पास लौट आए। दुर्योधन को कहा, महाराज वहां जाना बड़ा मुश्किल है, वहां बड़े बड़े शूरवीर गंधर्व अपनी हुंकार से हमको डराते हैं और उन्होंने कहा है यहां कोई क्रीड़ा भवन नहीं बनेगा। कह दो दुर्योधन से और कहीं दूसरे स्थान पर जाए, अभी हम गंधर्व इस सरोवर में जल क्रीड़ा करने आए हैं। दुर्योधन को एकदम अभिमान के कारण से क्रोध आया, सैनिकों को आज्ञा दी, गंधर्वों को निकाल दो, क्या मांगते हैं गंधर्व यहां, ये गंधर्व लोक नहीं है, ये पृथ्वी लोक है और इस पर मेरा शासन है, निकाल दो। सेवकों ने जाकर के गंधर्वों से कहा, गंधर्वों इस समय धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली राजा दुर्योधन यहां जल विहार के लिए पधार रहे हैं, इसलिए आप लोग रास्ता दो और इस स्थान को छोड़कर अलग हो जाओ। गंधर्व हंसने लगे और बोलने लगे, अच्छा दुर्योधन हमको आदेश देता है, ये कब से? तुम्हारा दुर्योधन महामंद बुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है, इसी से हम देवताओं पर वह इस प्रकार हुकूमत चलाता है, मानो हम उनके बनिए हो। तुम लोग भी निस्संदेह बुद्धिहीन हो और मृत्यु के मुंह में जाना चाहते हो, होश में आओ, बेहोशी की बातें मत करो। हमारे सामने ऐसे वचन बोलकर आप जीते हो, ये हमारी दया है, लौट जाओ। तुम एक राजा के सेवक हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं मारते, और राजा के पास जाकर समाचार सुनाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो यमराज के घर की हवा खाओगे। वे योद्धा इकट्ठा होकर दुर्योधन के पास गए, कहा कि महाराज आप चाहे जो कुछ भी कहो, गंधर्वों का बल तो बड़ा विलक्षण है, उन्होंने हमको डांटते हुए फटकारते हुए कहा है कि अब की बार तो हमने तुम्हारी जान बचा दी है, आइंदे इधर इस क्षेत्र की तरफ आंख देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम मृत्यु के घाट पर मिलोगे। दुर्योधन की क्रोधाग्नि भड़क उठी, सेनापतियों को आज्ञा दी, सेनापतियों मेरा अपमान करने वाले इन पापियों को जरा मजा तो चखाओ, दुर्योधन नाम का कोई राजा ऐसी ऐसी सेना रखता है, कोई परवाह नहीं है, वहां देवताओं सहित स्वयं इंद्र भी आकर क्रीड़ा क्यों न करता हो, तुम उस लोगों के सामने इंद्र भी क्या करेगा। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और हजारों योद्धा कमर कसकर तैयार हो गए और गंधर्वों को मार पीट कर बला वे वन में घुस ही गए। गंधर्वों ने जाकर अपने स्वामी चित्रसेन को जाकर ये समाचार सुनाया, तब उसने उन्हें आज्ञा दी, जाओ, क्या बात करते हो, इस नीच कौरवों की इस तरह की मरम्मत करो कि वो कभी जाने की गंधर्व कोई होते हैं। अब गंधर्वों में जोश आया, सबके सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों ने उन्हें अकस्मात हथियार उठाए अपनी ओर आते देखा तो दुर्योधन के सैनिक देखते देखते इधर उधर भाग गए। तब दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, विकर्ण, धृतराष्ट्र के कुछ अन्य पुत्र रथों पर चढ़कर गंधर्वों के सामने डट गए। कर्ण उनमें सबके आगे रहा। बस फिर क्या था, भीषण और रोमांचकारी युद्ध हुआ। कौरवों की बाण वर्षा ने गंधर्वों के शिकंजे ढीले कर दिए। तब गंधर्वों को भयभीत देख चित्रसेन को क्रोध चढ़ गया और उसने कौरवों का नाश करने के लिए मायास्त्र उठाया। चित्रसेन की माया से कौरव चक्र में पड़ गए। उस समय एक एक कौरव वीर को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण बचाकर भागने लगे। कौरवों की सेना तितर बितर हो गई। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अविचल खड़ा रहा। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी यद्यपि घायल तो हो गए थे, तभी उन्होंने गंधर्वों को पीठ नहीं दिखाई, बराबर मैदान में डटे रहे। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से कूदा और विकर्ण के रथ पर बैठकर प्राण बचाने के लिए उसके घोड़े छोड़ दिए। अब तो दुर्योधन के देखते देखते कौरवों की सेना भाग खड़ी हुई, किंतु और सब भाइयों को पीठ दिखाने पर भी दुर्योधन ने मुंह नहीं मोड़ा। जब उसने देखा कि अब गंधर्वों की अपार सेना उसकी ओर बढ़ रही है, तब उसने भीषण बाण वर्षा की, किंतु इन बाणों बरसों की गंधर्वों ने कोई परवाह नहीं की और उन गंधर्वों ने जाकर उसको मार डालने के विचार से चारों ओर से दुर्योधन को घेर लिया। उन्होंने अपने बाणों से उसके रथ को चूर चूर कर दिया। इस प्रकार रथ से गिरे जाने पर उसे चित्रसेन ने झपट कर जीवित ही कैद कर लिया। इसके बाद बहुत से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेर कर पकड़ लिया। कुछ गंधर्वों ने विंद, अनुविंद और समस्त राज महिलाओं को पकड़ लिया। गंधर्वों के आगे भागी हुई कौरवों की सेना ने सारा बचा हुआ सामान लेकर पांडवों की शरण दी। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ाने के लिए अत्यंत आतुर हुए। उनके मंत्रियों ने रो रो करके धर्मराज युधिष्ठिर से निवेदन किया, महाराज, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु धृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़कर ले जा रहे हैं। उन्होंने दुशासन, दुर्विषय, दुर्मुख, दुर्जय तथा सब रानियों को भी कैद कर लिया है, अतः आप उनकी रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन और दुखी अवस्था से बोलते हुए वाणी को जब युधिष्ठिर के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा, भीमसेन ने कहा, लंबी सांस लेकर कहा, हम बहुत प्रयत्न करके हाथी घोड़ों से लैस होकर जो काम करने जा रहे थे, वह गंधर्वों वही काम आज आप कर रहे हो। पर याद रखना, आप इनको मारना नहीं, क्योंकि मारने की प्रतिज्ञा आखिर मैंने कर रखी है। ये बात हमारे सुनने में आई है कि जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं, उन्हें दूसरे लोग नीचा दिखा देते हैं। ये बात हमें गंधर्वों ने प्रत्यक्ष करके दिखा दी। हम लोग इस वन में सांस, शीतल वायु, घाम आदि सह रहे हैं। तपस्या करने से हमारे शरीर बहुत कृश हो गए। हम आज बड़ी विपरीत परिस्थिति में हैं और दुर्योधन अपने समय की अनुकूलता से मौज उड़ा रहा है और वो दुर्मति हमें इस अवस्था में देखकर खुश होना चाहता है। वास्तव में तुम्हारे कौरव बड़े कुटिल हैं और ये भीमसेन इनकी कुटिलता को अच्छी तरह से समझता है। जब भीमसेन ये कठोर स्वर से बोलने लगे तो धर्मराज ने कहा, भैया भीम, ये समय कड़वी बातें सुनाने का नहीं है। देखो इन लोगों के चेहरे देखो, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इन लोगों के अंदर भय बैठा हुआ है। भीमसेन ये रक्षा पाने के लिए हमारी शरण में आए हैं। शरणागत व्यक्ति को उसके अपराध नहीं बताने चाहिए। इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में है, तुम ऐसी बातें कर इन्हें और क्यों धमकाते हो? कुटुंबियों में मतभेद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी कभी बैर भी ठन जाता है, फिर भी वो अपने तो अपने ही है ना। किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तब तो अपने को सब बैर विरोध भूल जाना चाहिए। भीम, गंधर्व लोग कौन होते हैं जो दुर्योधन को पकड़ करके ले जाए? दुर्योधन की स्त्रियों को, हमारे और भाइयों की स्त्रियों को आज बाहर के लोग अपने अधिकार में करें, भीमसेन ये तो हमारे लिए कलंक की बात है, हमारे कुल का तिरस्कार है। अतः शूरवीरों, शरणागत की रक्षा करने और अपने कुल की लाज रखने के लिए खड़े हो जाओ, अस्त्र शस्त्र धारण करो, देरी मत करो। अर्जुन क्या सुन रहे हो? नकुल और सहदेव सब मिलो, दुर्योधन को छुड़ा लाओ। देखो कौरवों की इन सुनहरी ध्वजा वालों में, रथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं, तुम इनमें बैठकर जाओ, गंधर्वों से युद्ध करो और दुर्योधन को छुड़ाने के लिए सावधानी पूर्वक प्रयत्न करो। अपने शरण में आए हुए कि जो प्रत्येक राजा यथाशक्ति रक्षा करता है, फिर तुम तो महाबली भीम हो, भला इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि आज दुर्योधन तुम्हारे बाहुबल के भरोसे अपने जीवन की आशा कर रहा है। मरने की आशा तो ये पहले ही कर रहा था, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, आज तुम्हारे बाहुबल से उसको जीवन मिले ये दुर्योधन के लिए सबसे बड़ी बात होगी। मैं तो स्वयं ही इस कार्य के लिए चला चलता, लेकिन मैं यज्ञ में बैठा हूं, मैंने ये यज्ञ आरंभ कर दिया, इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूं, नहीं तो ये काम मुझे स्वयं करना चाहिए। यदि गंधर्वराज समझाने बुझाने से न माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाओ, पर किसी भी प्रकार से दुर्योधन को छुड़ा लाना बहुत जरूरी है। यदि हल्के हल्के युद्ध करने पर भी वह न छोड़े तो फिर उसको दबाकर भी दुर्योधन को मुक्त करना है। धर्मराज की बात सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने सबको देखा, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी, सबको देखने के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, हे धर्मराज, मैं आज आपके सामने प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं, यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी आज गंधर्व राज का रक्तपान करेगी। सत्यवादी अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जो कौरव वहां आए थे उनकी आहें ठंडी होने लगी, उन्हें जी में जी आया और अंदर ही अंदर पश्चाताप की ग्लानि में जलने लगे कि हमने इनके साथ क्या बर्ताव किया और इनका कितना पवित्र हृदय है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम और उनके सारे भाई प्रसन्न होकर युद्ध के लिए उत्साहित होकर रवाना हो गए, फिर उन्होंने युद्ध के लिए खड़े हो गए, फिर उन्होंने अभेद्य कवच, तरह तरह के दिव्य आयुध धारण किए और गंधर्वों पर धावा बोल दिया। जब विजयोन्मत्त गंधर्वों ने देखा कि लोकपालों की समान चारों पांडव भी रथों पर चढ़कर रणभूमि में आए हैं, तो तो वे लौट पड़े और व्यूह रचना करके उनके सामने खड़े हो गए। तब अर्जुन ने गर्जना करते हुए गंधर्वों को समझाते हुए कहा, गंधर्वों तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो। इस पर गंधर्वों ने कहा, हमें आज्ञा देने वाला तो गंधर्वराज चित्रसेन के सिवा और कोई नहीं है अर्जुन, एक वे ही हमें जैसी आज्ञा देते हैं वैसा कर सकते हैं, तुम कौन होते हो आज्ञा देने वाले। गंधर्वों के ऐसा कहने पर कुंती नंदन अर्जुन ने उनसे फिर कहा, पराई स्त्रियों को पकड़ना और मनुष्यों के साथ युद्ध करना ऐसा निंदनीय कार्य गंधर्वराज को शोभा नहीं देता है। तुम लोग धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर इन महापराक्रमी धृतराष्ट्र पुत्रों को छोड़ दो, और यदि तुम शांति से उन्हें नहीं छोड़ोगे तो मैं स्वयं अपने पराक्रम के द्वारा इनको छुड़ा लूंगा। ऐसा कहने पर भी जब गंधर्वों ने अर्जुन की बात को यूं हवा में उड़ा दी तो उनके ऊपर पैने पैने बाण बरसने लगे। गंधर्वों ने भी बाणों की झड़ी लगाई। देखते ही देखते अर्जुन ने आग्नेयास्त्र छोड़कर हजारों गंधर्वों को यमराज के पास भेज दिया। महाबली भीम ने भी तीखे तीखे तीरों से सैकड़ों गंधर्वों का अंत कर दिया। माद्रीपुत्र नकुल और सहदेव ने भी संग्राम भूमि में कदम बढ़ाकर अनेकों शत्रुओं को घेर घेर कर मार डाला। महारथी पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तब वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को लेकर आकाश में उड़कर जाने लगे। कुंती कुमार अर्जुन ने उन्हें आकाश की ओर दौड़ते देख बाणों का एक ऐसा विस्तृत जाल बिछा दिया कि उनकी गति रुक गई। कहां जाए, बाणों का जाल हो गया, जा नहीं सके। वो जाल में ऐसे बंद हो गए जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद हो जाता है। अतः वे अत्यंत कुपित होकर अर्जुन पर गदा शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब अर्जुन ने उन पर स्थूणाकर्ण, इंद्रजाल, सौर, आग्नेय, साम्य आदि दिव्य अस्त्र चलाए। उनकी मार को वे सह नहीं सके। ऊपर जाने से तो उनके बाणों को जाल रोक रहा था, नीचे आए तो अर्जुन उनको बाणों से बींद रहे थे। गंधर्वों की हालत बड़ी शोचनीय हो गई। जब चित्रसेन ने देखा कि गंधर्व अर्जुन के बाणों से त्रस्त हो रहे हैं, वो गदा लेकर दौड़ा, किंतु अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा से उस लोहे की गदा के 7 टुकड़े कर दिए। तब वो माया से अदृश्य होकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित आकाशचारी आयुधों से युद्ध करने लगे और अंतर्धान रहने पर भी उसके शब्द का अनुसरण करके शब्दवेदी बाणों से चित्रसेन को बींधने लगे। अर्जुन के इन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिलमिला उठे और उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो तुम्हारे सामने मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन जो तुम्हें स्वर्ग में मिला था। स्वर्ग में अपनी कितनी बातें हुई थी, मैं तुम्हारा मित्र हूं। अर्जुन ने जब अपने मित्र को देखा कि मेरे शस्त्र उसके शरीर में जगह जगह लग गए, शरीर जर्जरित हो गया, तो अर्जुन ने उन सब शस्त्रों को खींच लिया और चित्रसेन कष्ट से रहित हो गया। ये सब देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हो गए और फिर चित्रसेन के पास बैठकर सब कुशलक्षेम पूछने लगे। महाधनुर्धर अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, हे वीरवर, तुम कौरवों के साथ युद्ध करने में क्या भाव रख रहे थे? कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? तुमने स्त्रियों से दुर्योधन को क्यों कैद किया? चित्रसेन ने कहा, वीर धनंजय, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। देवता लोग पृथ्वी की बहुत बातों को जहां वे जानना चाहें अपनी गुप्त शक्तियों से जान लिया करते हैं। जब उन्हें यह पता चला कि ये लोग आप लोगों को कष्ट देने के लिए अनाथों की तरह कष्ट भोगने वाले आप लोगों को देख देख करके आनंद लेने के लिए आए थे। बहाना उन्होंने गौओं के घोषों को देखने का बनाया था और तुम्हें देखना और उस यशस्विनी याज्ञसेनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। उनकी ऐसी खोटी मनोवृत्ति को जानकर इंद्र ने मुझसे कहा, जाओ दुर्योधन और उसके भाई और मंत्रियों को बांध करके यहां ले आओ, किंतु देखो किसी भी प्रकार से भाइयों सहित अर्जुन की रक्षा करना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा है और गान विद्या के कारण से तुम्हारा शिष्य भी है। तब देवराज के कहने से हम तुरंत यहां आ गए, उस दुष्ट को बांध भी लिया और अब मैं दो देवलोक में ले जा रहा हूं और इंद्र के आज्ञानुसार इस दुरात्मा को वहां क्या इसके साथ होता है वो हम देखेंगे। अर्जुन ने कहा, चित्रसेन आप हम जब एक दूसरे के मित्र हो गए हैं तो आज तो आपको एक बात मेरी माननी पड़ेगी। मेरे मित्र होने के नाते मैं अपनी बात मनवाने का हकदार हूं, क्योंकि चित्रसेन आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूं। छोटे को कभी अपनी बात रखने में अच्छा लगता है, छोटे की बात रखने में बड़े को भी आनंद का अनुभव होता है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो धर्मराज के आदेश के अनुसार तुम हमारे भाई दुर्योधन को छोड़ दो। चित्रसेन ने कहा, अर्जुन ये क्या करते हो, कितने दूर से हम यहां आए, कितना प्रयत्न किया तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम जानते नहीं कितना पापी है। स्वर्ग में भी द्रौपदी की भरी सभा में इन लोगों ने कि जो अत्याचार किए उससे उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वे लोग भी इनके पापों से घृणा करते हैं, कितना घमंडी है। इस अवस्था में भी तुमको चिढ़ाने के लिए यहां आया है और आप कहते हो इसको छोड़ दो, इसने धर्मराज और कृष्णा को धोखा दिया है। धर्मराज का इस समय यह जो कुछ करना चाहता था उसका पता नहीं, अच्छा चलो उन्हें सब बातें बता देंगे फिर उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही करेंगे, चलो हम धर्मराज से एक बार और बात कर लेते हैं। सब युधिष्ठिर के पास आए, युधिष्ठिर को सब बातें बताई, अजात शत्रु ने गंधर्वों की बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और ये कहा कि आप लोगों को कौरवों को छोड़ देना चाहिए। वे गंधर्वों से कहने लगे, हे गंधर्वों आप लोग बलवान हो, शक्ति संपन्न हो, बड़े सौभाग्य की बात है, आपने मेरे भाई बंधुओं और मंत्रियों सहित दुराचारी दुर्योधन का वध नहीं किया, मेरे ऊपर आप लोगों का बड़ा उपकार हुआ। फिर बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्सराओं सहित चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से स्वर्ग को चले गए। देवराज इंद्र ने दिव्य अमृत वर्षा करके कौरवों के हाथ से मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया, अपने स्वजन और राज महिषियों को गंधर्वों से मुक्त कराकर पांडवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कौरवों ने स्त्री और राजकुमारों के सहित पांडवों का बड़ा सत्कार किया। इधर भाइयों के सहित बंधन से छूटे हुए दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से कहा, भैया हर कहीं ऐसा साहस मत नहीं करना चाहिए, देखो साहस करने वाले को सदाई विजय नहीं मिला करती है। दुर्योधन अब तुम अपने भाइयों सहित कुशल पूर्वक अपने घर चले जाओ, गंधर्वों से ऐसा बैर मोल नहीं लेना चाहिए। धर्मराज के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने नीचा सिर किया और प्रणाम करके नगर की ओर चला गया, परंतु उसका हृदय एकदम टूट टूट हो गया, इंद्रियां नष्ट हो गई, उसका हृदय फटा जा रहा था। जन्मेजय ने पूछा, हे वैशंपायन जी महाराज, दुर्योधन लज्जा के भार से बहुत दब गया था तथा शोक से उसका हृदय उद्विग्न हो रहा था, ऐसी स्थिति में उसने हस्तिनापुर में किस प्रकार प्रवेश किया होगा, कैसे वे धृतराष्ट्र के सामने गए होंगे और कैसे प्रजा के सामने उसने बातें की होगी, कैसे वो सेनापतियों से मिला होगा, इसका तो विस्तार से वर्णन सुनाइए। वैशंपायन जी कहने लगे, राज